दो बंदों को, और आसिया अमजद जो चकवाल से एमपी हैं खवातीन की नशस्तों पर, वो बेचारी तो कौमे में चली गई थी, अब पता नहीं उनका क्या हालत है, लेकिन बहुत सीरियस थी। इमरान खान भी उसकी आदत के लिए भी गए तो वो बहुत सीरियस थी, उनके सर में चोट लगी थी। तो जो पंजाब में अब सिर्फ इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है कि वहां हमजा के पास अक्सरियत नहीं है। अगर हमजा को ये नहीं पता कि शाम को क्या होगा, और उसके सबूत के तौर पर आप देखेंगे जरदारी साहब आज शुजात के जाके उन्होंने घुटने छुए हैं, फिर दोबारा टेलीविजन पे सारी कौम ने देखा है कि वो झुक के मिले हैं, ठीक है बुजुर्ग हैं बड़े हैं उन्हें इसी तरह मिलना चाहिए, लेकिन इस दफा जो जरदारी साहब की कमर में जो खम था उसकी एक बड़ी वजह सिर्फ अदब नहीं था बुजुर्गों का चौधरी शुजात साहब का, उसके पीछे ये पंजाब का बजट सेशन था, क्योंकि बजट जिस जो गवर्नमेंट अपना बजट नहीं अप्रूव कर सके पास करा सकती वो प्रैक्टिकली वो गवर्नमेंट खत्म हो चुकी होती है, वो फेल हो जाती है। और फिर इसमें एक और मजाक देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एमपीए थे पीटीआई के जो डायरेक्ट सीटों पे आए हुए थे 20, उनको तो उन्होंने डीसीट कर दिया, लेकिन खवातीन नशिस्तें जो हैं 5 वो अभी तक उसका फैसला उन्होंने रोका हुआ है। क्या उन्होंने इनहराफ नहीं किया पार्टी पॉलिसी से? उन्होंने तो डायरेक्ट इनहराफ किया है, क्योंकि जो एमपीए आपने जिन्हें घर भेजा है आपको उन्हें इसलिए भेजा है कि ये लोग पीटीआई के टिकट पे पब्लिक से वोट लेके आए थे और आज वो इनहराफ कर गए हैं पार्टी चेयरमैन की हदायत से, इसलिए आपने उन्हें डीसीट कर दिया है। लेकिन जो खवातीन आई थी 5 मखसूस नशिस्तों पे वो तो डायरेक्ट आई ही चेयरमैन पीटीआई के रहमो करम पे थी, उसमें तो पब्लिक का कुछ लेना देना ही नहीं था। उन्होंने अगर अपने पीटीआई के चेयरमैन को अपनी पार्टी के हेड को अगर इनहराफ किया उसकी बात से, उसकी बात मानने से इनकार किया है, वो तो पहले डीसीट होनी चाहिए थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद, माशाल्लाह सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो साबिक चीफ सेक्रेटरी एंड साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ नवाज शरीफ सईद मैदी के साहब दामाद हैं, वो अपनी मर्जी करते हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं अब तक, और बिल्कुल किसी से डरते भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी सर्विस पूरी कर चुके हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, ये उनकी जिंदगी की आखिरी शॉट है। वो कहते हैं मैं अपना रोल जो मैंने खेलना है खुल के खेल लूं, और उन्हें शायद राजा रियाज का ये भी आगे तसल्ली इन्होंने कराई होगी कि रिटायरमेंट के बाद हम आपको इलेक्शन लड़ाएंगे और आपको टिकट भी देंगे नून लीग का, अगर टिकट ना दे सके तो हम डायरेक्ट सदरे पाकिस्तान रफीक तरड़ साहब की तरह आपको बना देंगे। तो ये मियां बिरादरान जो है ये बड़ी लंबी लंबी कमिटमेंट्स करते हैं लोगों के साथ, और वो कमिटमेंट्स निभाते भी हैं पूरी भी करते हैं।
तो ये मूना सिलाई साहब के ऊपर
एक कॉल्स भी ले रहे हैं साथ साथ, क्योंकि हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो
हेलो,
हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात?
तो मैं तो जो नंबर पूछने वाला था नंबर,
अच्छा मैं आपको मैं बाद में दे दूंगा, बहुत शुक्रिया आपका। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो ओके 416-620-1778। मैं ज्यादा फोन कॉल्स नहीं ले सकूंगा, मगर फिर भी विल टेक एडवांटेज ऑफ फयाज विद अस, एंड हम जो है आपकी फोन कॉल जरूर लेंगे 416-620-1778। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम,
कौन बात कर रहे हैं सर?
जी सर मैं बिलालत कर रहा हूँ, मुझे मेरा क्वेश्चन कौन ही है सर, सिर्फ मैं इनके जोश और इनकी चटाई को सलाम करता हूँ, जिंदाबाद, इंडिया बहुत जबरदस्त करते हैं।
बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बराबर, बहुत शुक्रिया आपका। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम ओके जी कुछ कह रहे थे आप
जी फियाज भाई, ये जो मुनस इलाही के ऊपर जो केस लगाया है अभी, उसके उस बारे में आप क्या कहते हैं, जरा थोड़ा सा बताएं, उसके ऊपर रोशनी डालें।
मेरे ख्याल में अगर आप इमरान खान को सियासत से आउट करना चाहते हैं ना, देन वी आर बैक टू 90s की पॉलिटिक्स।
ओ
90s की पॉलिटिक्स में यही था ना कि पीटीआई की गवर्नमेंट अपना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई तो मुस्लिम लीग नून वालों के खिलाफ केसेस बनाना शुरू कर दें, और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आ गई तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस बनाना शुरू कर दें। अगर इमरान खान को हमारी एस्टेब्लिशमेंट और हमारे मुक्तदर हलके और हमारे ये बड़े लोग अगर ये तय कर चुके हैं कि उसे इक्वेशन से आउट करना है, तो फिर इट मींस के वेलकम बैक टू 90s की पॉलिटिक्स। और 90s की पॉलिटिक्स में आप भी उस वक्त इस्लामाबाद में थी, मैं भी इस्लामाबाद में था, मैंने 3 साल प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उनके साथ एज ए बीट रिपोर्टर कवर किया
जी,
और पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी उनके साथ दौरे किए उनके जहाज में जूटे लेते हुए, तो मैंने करीब से बहुत चीजें देखी हैं। और यकीन माने कि उस वक्त जो हुआ सो हुआ, 97 में मैं आपको एक ये केसेस की कहानी बता दूं कि 97 में जब मियां नवाज शरीफ साहब आ गए जीत के और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट खत्म हो गई, तो एक दिन मुझे अपने ऑफिस से हमारे चीफ एडिटर साहब ने कहा कि जी एक हाई प्रोफाइल असाइनमेंट है, और मैं उस वक्त इस्लामाबाद में हेड ऑफ रिपोर्टिंग था, चीफ रिपोर्टर डिप्टी एडिटर रिपोर्टिंग था, तो उन्होंने कहा कि ये करना है, एक असाइनमेंट है, लेकिन ये करनी तुमने किसी रिपोर्टर को नहीं भेजना, तुमने खुद करनी है। मैंने कहा जी ठीक है, मैं खुद कर दूंगा, बताएं करना क्या है। उन्होंने कहा तुम्हें शाम को एक कॉल आएगी, कोई बंदा बुलाएगा तुम्हें किसी जगह, वहां चले जाना, उसकी बात सुन लेना। शाम को मुझे कॉल आई तो उसने कहा जी मैं सैफुर रहमान बोल रहा हूँ और आपको आपको आपके चीफ एडिटर साहब ने कुछ हदायत दे दी हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल दे दी हैं, उन्होंने मुझे बताया था फोन आएगा। उन्होंने कहा जी फिर फलां जगह पहुंच जाएं। उन्होंने मुझे बुला लिया और अपने ऑफिस बुलाया और उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी बता दिया है कि ये हाई प्रोफाइल असाइनमेंट है और ये इट्स बिटवीन यू मी एंड हिम, इट्स बिटवीन ऑल थ्री ऑफ अस। मैंने कहा जी ऐसी बात है। उन्होंने कहा बस अब ये करना है तुमने। उन्होंने अपने ऑफिस में तीन चार डायरेक्टर रोक के रखे हुए थे। उन्होंने कहा मैं तीन चार ऑफिसर से, नैब के तीन चार ऑफिसर से, उस वक्त नैब नहीं था, उस वक्त एहतसाब कमीशन था और एहतसाबुर रहमान कहते थे सैफुर रहमान को। उन्होंने कहा कि मैं इन तीन डायरेक्टर्स को मैंने रोक के रखा हुआ है, उनसे मैंने तुम्हारा तारुफ करा देना है। उसके बाद तुमने ये करना है कि तुम जो है जब चाहोगे, जब ये ऑफिस शाम को 5 बजे ऑफिस बंद हो जाता है हमारा, तो तुम उसके बाद आया करोगे यहाँ और ये तुम्हें फाइलें दिखाएंगे अपने और कुछ रिपोर्टें दिखाएंगे और वो फाइलें तुमने पढ़नी है। तुम यहाँ से कोई बाहर पेपर लेके नहीं जा सकते, लेकिन पढ़ सकते हो। और ये उस वक्त व्हाट्सएप का दौर भी नहीं था, वरना मैं कुछ व्हाट्सएप ले लेता। उन्होंने कहा कि तुम फोटो भी नहीं ले सकते, फोटो कॉपी भी नहीं ले सकते, यहाँ से पेपर बाहर भी नहीं लेके जा सकते, लेकिन तुम पढ़ सकते हो और यहाँ से फिर तुम स्टोरियां अपनी ले सकते हो जरदारी एंड ग्रुप की करप्शन की, लेकिन ये डायरेक्टर जो है इनकी मैंने ड्यूटी लगा दी है, मैं अभी दूसरे कमरे में बैठे हैं, मैं तुम्हारी मुलाकात कराता हूँ। ये डेली शाम को आफ्टर ऑफिस आवर्स में तुम्हें यहाँ दस्तयाब होंगे और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है और तुमने यहाँ से स्टोरियां लेके जानी है। तो तुमने आगे क्या करना है ये यू नो एंड योर चीफ एडिटर नोज कि क्या करना है। तो फिर जनाब उन्होंने मुझे उन तीन चार डायरेक्टर से मिलवाया। उन्होंने कहा जी ये साहब हैं, ये आया करेंगे शाम को, आपने इन्हें खामोशी से ये जो जो फाइलें कहते हैं इन्हें दिखा दें और जो मैं आपको कहूंगा वहां से स्टार्ट लेना है। उसके बाद उन्होंने कहा जी ठीक है। दूसरे दिन मैं गया और सैफुर रहमान साहब ने उन्हें हदायत दी हुई थी कि ये फलां फलां फाइलें उसे दिखानी है। मैं गया, उन्होंने मुझे फाइलें मेरे सामने रख दी, उन्होंने कहा जी ये पढ़ लें और समझ लें कि यहाँ क्या है। वहां ऐसे ऐसे केस बने हुए थे जरदारी साहब के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के जितने उस वक्त मिनिस्टर जो आउटगोइंग मिनिस्टर थे सबके खिलाफ उनकी फाइलें थी और वो मैं सारी पढ़ी और उसके मैंने किस बार वो सिलसिला छापना शुरू किया। एक मैंने पूरा कलर पेज छापा, दूसरा छापा, तीसरे पे जाके मेरी हिम्मत जवाब दे गई कि उसमें इतना झूठ, इतना कुछ वो फैब्रिकेटेड स्टोरीज थी कि मैंने अपने चीफ एडिटर साहब को उसके बाद टरखाना शुरू कर दिया। वो मुझसे पूछे मैं इधर निकल जाऊं, उधर निकल जाऊं, उधर बिजी था, इधर बिजी था और आखिर में मैंने तंग आके कह दिया कि सर बहुत हो गई, जितना उनको आपने बदनाम करवाना था वो कर दिया है हमने, अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। क्योंकि वहां सैफुर रहमान साहब ने तो झूठो झूठ कहानियां रखी हुई हैं और बड़ी बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं, मैं फिर किसी प्रोग्राम में उनका जिक्र करूंगा। और ऐसे ऐसे कहानियां होती थी कि बस कानों को हाथ लगाता था, लेकिन क्योंकि उस वक्त वो उनका सिलसिला था, मैं उस वक्त वहां रिपोर्टर था, मेरे पास डॉक्यूमेंट सरकार के पड़े हुए हैं, मेरे पास वो प्रूफ थे सरकार के डॉक्यूमेंट, तो मैं उनके रेफरेंस से ही वो छाप रहा था, रेफरेंस से ही मैं फीचर लिख रहा था, कलर पेज पूरे पूरे कलर पेज इनकी करप्शन पे हमने छापे, लेकिन मेरे पास तो प्रूफ थे, मैं खुद आंखों से देख के आया था कि वहां सैफुर रहमान के पास एहतसाब कमीशन के ऑफिस में ये फाइलें पड़ी हैं और ये इन पे केसेस हो रहे हैं और ये केसेस हो चुके हैं और इन पे तहकीकात हो रही हैं और ये प्रूफ साथ, तो मैं तो उनको उनका रेफरेंस देके छाप रहा था, लेकिन बहुत अनबिलीवेबल किस्म की स्टोरीज थी। तो ये मूनस इलाही, कल तक मूनस इलाही ठीक था और जब ये उसके घर वोट मांगने जा रहे थे परवेज इलाही के पास, उसे वजीर आला बना रहे थे और उसे अपने साथ मिला रहे थे, उस वक्त मूनस इलाही भी ठीक था, परवेज इलाही भी ठीक था, अब वो उनके साथ नहीं है तो अब उसके खिलाफ केसेस हो रहे हैं। और एक और बात आप देखें, आप गौर करें कि इमरान खान ने मूनस इलाही को बहुत अरसे तक रिजिस्ट किया और इमरान खान ने उसे कैबिनेट में शामिल नहीं किया, इस बात पे काफ लीग बड़ा अरसा तक नाराज रही इमरान खान से। अब क्या बात है कि इमरान खान को वो साफ नीट क्लीन और शफाफ लगा है? दो रीजन हो सकती हैं, एक तो ये कि वाकई इमरान खान ने तहकीकात कंप्लीट अपनी तसल्ली कराने के बाद कहा हो कि हाँ वाकई मूनस इलाही एनएलसी के केस में इन्वॉल्व नहीं था और वो वहां से साफ क्लीन चिट उसे मिल गई है तो आप उसे कैबिनेट में शामिल कर लेते हैं, एक तो ये बात हो सकती है। अगर पीटीआई वाली विशफुल थिंकिंग हो इन दोस्तों की जो पीटीआई वाले दोस्त प्रोग्राम सुन रहे हैं कि ये हो सकता है कि मूनस इलाही ने अपने आप को क्लीन चिट लेने के बाद वो कैबिनेट में इमरान की शामिल हुआ हो। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि इमरान खान इतने बुरी तरह पॉलिटिकल प्रेशर में फंस गया हो कि उसने कहा हो कि कोई नहीं, इस बात को इग्नोर करते हैं, खैर है, जिस तरह और बहुत सारे मेरे साथ चिमटे हुए हैं, मेरे एक दागजदा एक मिनिस्टर है तो कोई बात नहीं, एक और आने दो, क्योंकि खुसरो बख्तियार भी तो उसी कैबिनेट में बैठा हुआ था।
जी 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 जी।
तो वो दोनों चांसेस हैं, या तो वो क्लीन करके इमरान की कैबिनेट में गया था, दूसरा चांस ये भी है कि इमरान ने आंखें बंद कर ली हो कि ठीक है लेट इट गो, क्योंकि वो पॉलिटिकल प्रेशर में आ गया हो। दोनों सूरतें पॉसिबल हैं, कोई यहाँ आसमान से उतरा कोई भी नहीं है, ना इमरान खान, ना आसिफ जरदारी, ना मियां नवाज शरीफ साहब, और शहबाज शरीफ साहब तो बिल्कुल ही नहीं धुले हुए।
एक कॉल लेते हैं फयाज जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
हेलो अस्सलाम वालेकुम फयाज बुलाना साहब, मैं हमायूं शेख अर्ज कर रहा हूँ। आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ कि आप पाकिस्तान में नहीं, मेरा हाल कनाडा में है। अच्छा, आजकल के हालात के मुताबिक आपके ख्याल में यहाँ खुमैनी प्लस से कम कोई हल है यहाँ हमारा पाकिस्तान का, खुमैनी प्लस प्लस, इसके मुतालिक आप बता दें मेरा।
बहुत शुक्रिया सर आपका,
बहुत शुक्रिया हुमायूं शेख साहब आपकी काइंड वर्ड्स का, आपकी मेहरबानी। लेकिन ये जो बात खुमैनी प्लस प्लस की बात करते हैं ना, खुमैनी का इनकलाब 70s में आ गया था, 70s से हम 50-55 साल आगे निकल गए हैं। आज हम 50-55 साल पीछे एक जो तजर्बा हुआ उसको यहाँ रिपीट नहीं कर सकते, ना रिपीट होता हुआ देख सकते हैं। और स्पेशली वो ईरान में हुआ था, हमारे यहाँ नहीं हुआ था। और ईरान में शायद हमें उस तरह, हम तो कहानियां पढ़ते हैं किताबों में, मूवीज में देखते हैं, या सुनी सुनाई बातें हमारे तक पहुंचती हैं, हमें नहीं अंदाजा कि वहाँ शाह ईरान ने और उसके जितना ग्रुप था उन लोगों ने वहाँ हालात किस हद तक खराब किए हुए थे, और वहाँ उस वक्त किस हद तक अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट थी, रशिया की इन्वॉल्वमेंट थी, जियो पॉलिटिक्स क्या थी, हमें वो सारी चीजें नहीं पता, और किस तनाजर में किन हालात में वो खुमैनी इनकलाब बर्पा हुआ था। हम बात करते हैं आज पाकिस्तान की बात करते हैं, 50 साल बाद के पाकिस्तान की बात करते हैं। हमारे अपने जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसमें हुमायूं शेख साहब जैसे दोस्त चाहते हैं कि खुमैनी प्लस प्लस इनकलाब आए, लेकिन उसके इम्कान किस हद तक हैं मुझे नहीं नजर आता कि ऐसा कोई इनकलाब के चांसेज हैं। इनकी जो ख्वाहिश है वो बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में करप्शन अगर इस हद तक हो कि हम में से हर बंदा अपने सर से लेकर पांव तक करप्शन में डूबा हुआ है, हम में से हर बंदा डूबा हुआ है, वही करप्शन से बचा हुआ है जिसे चांस नहीं मिला। आपने देख लिया कि इमरान खान साहब को तो सारी दुनिया क्लीन कहती है, लेकिन क्या उसकी कैबिनेट को आप क्लीन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। आपने देखा कि पंजाब में उसने अवॉइड किया अलीम खान को चीफ मिनिस्टर बनाने से, उसने अवॉइड किया राजा यासर हुमायूं सरफराज को चीफ मिनिस्टर बनाने से, कि सिर्फ इस वजह से उसने किसी बंदे ऐसे बंदे के साथ पार्टनरशिप की थी जिसने उसका आईडी कार्ड यूज करके एक कंपनी रजिस्टर कराई, एक फार्मास्यूटिकल अपना फार्मेसी और एक केमिस्ट स्टोर, ड्रग केमिस्ट स्टोर, पाकिस्तान फार्मेसी को केमिस्ट स्टोर कहते हैं, वो उनके नाम पे रजिस्टर्ड था और वो वहां कहीं डिफॉल्ट कर गया, और उसमें एक वन ऑफ द डायरेक्टर्स राजा यासर हुमायूं सरफराज था, चकवाल से जो एमपीए था। इस वजह से हालांकि वो अमेरिका से पढ़ के गया हुआ है, प्रेजेंटेबल है, अच्छा बोलता है, पीटीआई का डाई हार्ड वर्कर है, लेकिन उसको इस वजह से इमरान खान ने चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया था। मियां असलम इकबाल को नहीं बनाया कि वो लाहौर के अंदरूने शहर के जो ताजरों के इश्यूज हैं वहां कोई कंप्लेंट्स आई थी, अलीम खान के बारे में कि वो जमीनों के काम में है उस पर कंप्लेंट्स थी। इमरान खान ने सबसे बचते बचाते उसने एक दूर अफ्तादा इलाके के एक सारे बंदे को जो 6 महीने पहले जिसने पीटीआई ज्वाइन की, उस्मान बुज़दार को लगा दिया। लेकिन आज उस्मान बुज़दार के जो किस्से कहानियां सामने आ रहे हैं वो सब सबके सामने हैं, और जिस तरह पंजाब में ट्रांसफरों, तबादलों और तरक्कियों पर डीलें हुई वो सारे लोगों के सामने हैं। इसमें 100% सच्ची नहीं होगी, झूठ भी होगा उस्मान बुज़दार के हवाले से, लेकिन अगर 20% या 30% भी सच्ची है तो क्यों है? अगर इमरान खान क्लीन है तो क्या उसे पूरे पंजाब में 13 करोड़ अवाम के, 13 करोड़ की आबादी में एक बंदा भी अपने जैसा क्लीन नहीं मिला जिसे वो चीफ मिनिस्टर बनाता? और यही इमरान खान की नाकामी की वजह है कि आज वो हुकूमत से बाहर है और आज उसे जगह जगह जलसे करने पड़ रहे हैं। और अफसोस का मकाम है कि 25 मई को जो उसने लॉन्ग मार्च किया है, सबसे बड़ा जुलूस लाहौर से आना चाहिए था कि सबसे बड़ा सूबा उसका चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार था, लेकिन उस्मान बुज़दार तो हमें कहीं नजर ही नहीं आया, कौन सी बिल में घुसा हुआ था चूहों की तरह, बाहर ही नहीं निकला। और इमरान खान को बिल आखिर पनाह लेनी पड़ी जाके केपीके में, और वहां से सरकारी खराजात हुए या नहीं हुए, लेकिन केपीके से वजीर आला महमूद खान अपना एक जुलूस लेके आया और उसकी बुनियाद पर ही आके इन्हें इस्लामाबाद आके इन्होंने अपनी पावर अप शो इन्होंने की, शो की पावर की, एक शो किया कि हमारे पास इतनी ताकत है, पावर है। पंजाब में किधर गए थे? छापे हुए, गिरफ्तारियां हुई, सारा कुछ हुआ, तो पॉलिटिक्स में ये तो होता है। इसके बावजूद अगर उस्मान बुज़दार की जगह वहां कोई अच्छा बंदा होता तो टोटली रिजल्ट डिफरेंट होता आपका।
ठीक है, जी अच्छा फियाज भाई, ऐसा है कि जो ये अब सारी चीजें जो अब सामने आना शुरू हो गई हैं और अब जो मुफ्ता इस्माइल साहब हैं वो भी अब कहना शुरू हो गए हैं और जी ये जो कुछ सारी महंगाई है ये तो सारी आलमी मंडी की है, तो सर अगर आलमी मंडी की आपके वक्त है तो उस वक्त जब वो था इमरान खान था उस वक्त तो भी तो आलमी मंडी की महंगाई थी और उस पर चल रहे थे ना चीजें, आपने आते सारी जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए हैं, आपने कुछ 30 के करीब थे जो डैम शुरू हुए हुए थे उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, हेल्थ में कट्स कर दिए हैं तो अब पैसे भी नहीं है और करोड़ों के इश्तिहार भी आ रहे हैं, तो भाई ये मतलब ठीक नहीं था वो आदमी पहला ही जो कि भाई करोड़ों के इश्तिहार नहीं था लगा रहा लेकिन काम तो कर रहा था, कोई कट्स तो नहीं था कर रहा, तो अब आपको आलमी मंडी की महंगाइयां नजर आ गई हैं, पहले नहीं थी आ रही, क्या कहते हैं आप इस सारे सिनेरियो पे?
अच्छा ये जो मुफ्ता इस्माइल है ना इसके बारे में तो जो लोग इसे मुफ्ता इस्माइल कहते हैं वो सही कहते हैं,
अच्छा
इस बंदे का मुफ्ता लगा हुआ है।
अच्छा जी,
ही डोंट डिजर्व टू बी अ फाइनेंस मिनिस्टर।
अच्छा
आप देखें पाकिस्तान में दुनिया में जब कहीं भी बजट पेश किया जाता है तो वो बजट पेश करना एक्चुअली अगले एक साल का तखमीना होता है उस गवर्नमेंट का उस मुल्क का कि हमने अगला एक साल किस तरह चलाना है, हमने कहां से हमारे कितने पैसे आने हैं, कहां हमने कितने स्पेंड करने हैं और कहां कहां से हमने पिछले साल गलत फैसले किए थे, कहां कहां हमने करेक्शन करनी है। तो वो एक बजट जो है एक्चुअली जब एक मुल्क का खजाना का सरबराह जब पेश कर देता है तो पाकिस्तान मुल्क का जो कारोबारी तबका होता है उनको एक एतमाद मिलता है कि हाँ अब ये गवर्नमेंट कोई सीरियस हो गई है, पिछली गलतियां नहीं दोहराएंगे, आगे इन्होंने अच्छे फैसले कर लिए हैं तो अगला एक साल अच्छा गुजरेगा, उनका कॉन्फिडेंस बहाल होता है तो अगले दिन ही स्टॉक मार्केट जो है वो अगर ऊपर नहीं जाती तो कम अज कम स्टेबल हो जाती है। लेकिन इन्होंने जिस दिन बजट पेश किया अगले दिन स्टॉक मार्केट 1134 पॉइंट गिर गई और डॉलर 205 रुपए पे चला गया।
अच्छा
अब इससे बड़ा इसके मुंह पे तमाचा क्या होगा, और फिर अफसोस का मकाम ये है कि शायद ये पाकिस्तान का, हमने बहुत सारे वज़ारे खजाना को जो है वो कवर किया है, बहुत सारे वज़ारे खजाना की हमने स्पीचेस सुनी हैं, उनके पोस्ट बजट धांसू किस्म की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुनी हैं जिसमें एक एक चीज पे उनसे लड़ाई होती थी, लेकिन ऐसा बंदा हमने नहीं देखा कि जो जब भी बोलता है बुरा ही बोलता है। वो आज भी कह रहा है कि महंगाई का कोई तोड़ नहीं है, कभी किसी गवर्नमेंट के बंदे ने कभी किसी हुकूमती बंदे ने पब्लिक को इस हद तक मायूस किया है, चाहे क्यामत भी आ रही हो तो हुकूमत का काम तो आप तो एक फादर ऑफ द काइंड ऑफ फैमिली के सरबराह के तौर पर होते हैं, आप एक घर के बाप की तरह होते हैं, अगर घर का बाप ही कहे कि हमारे घर का कुछ नहीं बन सकता भाई, हम गए हम डूब गए, हमारा कल ये घर गिर जाएगा तबाह हो जाएगा, तो वहां रहने वालों का एतमाद क्या होगा। वजीर खजाना साहब के मुंह से आज तक मैंने तो कोई अच्छी बात नहीं, आज भी उनकी स्पीच ये थी कि महंगाई का तोड़ नहीं है, मरियम औरंगजेब आज भी कह रही हैं कि और बढ़ानी पड़ेगी पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत पे इन्होंने $5 की जो सब्सिडी थी वो पहले वापस ली और अब ₹7.90 की मजीद उसे महंगा करने लगे हैं फी यूनिट, तो पता नहीं क्या होगा। हालांकि अपोजिशन का काम होता था कि वो हुकूमत पे तनकीद करते थे और हुकूमत हमेशा लोगों को हौसला देती थी कि वो सब गलत कह रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हम यहाँ मौजूद हैं, हम ये करेंगे अच्छा, हम ये अच्छा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम ये करेंगे तो ऐसा होगा, वो हौसला बनाते हैं लोगों का। लेकिन ये अजीब हुकूमत है, जब भी बोलते हैं लोगों को मायूसी करते हैं। और अब अपोजिशन का ड्रामा देखें, राजा रियाज साहब माशाल्लाह क्या जबरदस्त इंटेलेक्चुअल हमने ढूंढा है अपोजिशन लीडर बनाने के लिए, असेंबली में बजट पेश हुआ उन्हें स्पीच लिखी लिखाई पकड़ा दी गई और हुकूमत ने स्पीच लिख के दी, 100% हुकूमत ने स्पीच लिख के दी, तारीख में पहली दफा हुआ कि अपोजिशन लीडर को स्पीच लिख के हुकूमत ने दी कि ये स्पीच है हमारे खिलाफ, ये स्पीच करो, और उसने बजट पे तकरीर की और तकरीर के हर दूसरे तीसरे फिक्रे के बाद वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ देखते थे कि सर मैं ठीक बोल रहा हूँ, सर मैं थोड़ी ठीक मैं तो अनुकवर कर रहा हूँ, और सिर्फ एक फिक्रा जो उनका था उसमें तनकीद वाला था कि आपने जितने प्रॉमिसेज किए हैं प्लीज इन्हें पूरा भी कीजिएगा। इतनी ये जो वो कहते हैं ना कलमा हक, जाबर हुक्मरान के सामने कलमा हक पूछ के कहना चाहिए, तो राजा रियाज साहब ने जाबर हुक्मरान के सामने کلمہ حق پوچھ کے ادا کیا بلکہ ان کا لکھا ہوا کلمہ حق ادا کیا.
جان کی امان پاؤں تو کچھ کہوں.
یہ اس سال جو کہ ہمارے ساتھ سب مذاق ہو رہا ہے, لیکن میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ بجٹ پیش ہونے کی دیر ہے, اس کے بعد یہ انہیں دے ہیو ٹو سٹ اینڈ دے ہیو ٹو فائنلائز دا ڈیٹ فار جنرل الیکشن, کیونکہ جنرل الیکشن کے علاوہ اور کوئی سولوشن نہیں ہے. اگر یہ الیکشن کی طرف نہیں جاتے اور میاں شہباز شریف صاحب نے جس طرح پہلے 35 دن وزیراعظم بننے کے بعد گو مگو کی کیفیت میں رہے ہیں, اگر یہ آپ الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے مزید گو مگو کی کیفیت میں رہتے ہیں تو یہ مزید نقصان کریں گے پاکستان کا. یہ کوئی صورت ہی نہیں کہ یہ حکومت 1.5 سال پوری چل جائے. دو ووٹوں پہ کھڑی ہوئی حکومت کا کیا مستقبل ہے؟
بس ایک آخری کوسچن فیاض بھائی, صرف ایبسولیوٹلی دا لاسٹ کوسچن. یہ بڑے خوش ہو کہ مریم اورنگزیب آج کل بڑا بول کے کود کود کے کہہ رہی ہے ہم غریب لوگوں کو 2000 روپے دے رہے ہیں. تو بھائی وہ جو پہلی گورنمنٹ تھی وہ تو 14,000 دے رہی تھی, اور وہ بیچاری اس کو دیکھا تھا, وہ جو ڈاکٹر نشتر تھی کتنے شرافت سے کہہ رہی تھی ہم لوگوں کو جو غریب ہیں ان کو 14,000 دیں گی. تو یہ ہم جو غریب ہیں ان کو 2,000 روپیہ دے رہے ہیں جی, تو یہ ذرا ایکسپلین کریں.
ایک کالر بھی لے لیتے اس کے بعد آپ ایکسپلین کیجیے گا جی. جی ہلو, السلام علیکم.
السلام علیکم, کیسے ہیں ماجد بھائی؟
الحمدللہ, کون بات کر رہے ہیں سر؟
ٹھیک ٹھاک, میں رضوی بات کر رہا ہوں.
جی رضوی صاحب,
ماجد بھائی ان سے یہ پوچھیں کہ الیکشن تو سب کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہے الیکشن کے علاوہ کوئی اس وقت وے آؤٹ نہیں ہے, لیکن اب جو یہ الیکشن کمیشن سارے حلقہ بندیاں نہیں کر دی, ووٹ ادھر سے ادھر کر دی ہے, تو اس میں فیئر الیکشن کرانے کا, فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کا کتنے ہونے کا کتنے پرسنٹ چانس ہے؟ تھینک یو,
بہت شکریہ.
10%
جی فیاض صاحب.
اچھا یہ مجھے نام بھول گیا جن صاحب
نے
کی تھی, رضوی صاحب, بہت شکریہ رضوی صاحب کال کرنے کا. رضوی صاحب کا اندیشہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, اور رضوی صاحب کی طرح ہمارے ملک کی بڑی اکثریت اس خوف کا شکار ہے کہ الیکشن فیئر, فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے. ان کے خدشات میں بہت حد تک جان ہے, لیکن میں پھر وہی کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب یہ سارے 90s کی پریکٹس کر رہے ہیں, 90s کے فاؤل پلے کھیل رہے ہیں. انہیں اندازہ نہیں ہے کہ دنیا بدل چکی ہے, دنیا بہت آگے جا چکی ہے. آج کل کا جو سلسلہ ہے اس میں صبح کوئی چیز ہوتی ہے, شام تک وہ پوری دنیا میں گھوم جاتی ہے, دیر نہیں لگتی. اور پھر عمران خان ایک ایسا فیکٹر بن چکا ہے کہ پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو کہ جس میں اگر 5 لوگ رہنے والے ہیں تو اس میں ایک بندہ کم از کم عمران خان کا حامی نہ ہو. حتیٰ کہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک سینیٹر تھے مسلم لیگ نون کے, میں ان کا نام نہیں لیتا, بےچارے خواہ مخواہ بدنام ہو جائیں گے, بزرگ آدمی ہیں, ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور ڈسکشن کر رہے تھے, اور مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. اب وہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ چکے ہیں, اس وقت مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, اور بحث کے دوران آپ کو پتا ہے پاکستان میں ٹاک شوز تو باقاعدہ ایک فنی پروجیکٹ ہوتا ہے نا, باقاعدہ مزاحیہ پروگرام ہوتے ہیں, ان میں بہت لڑائی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اس حد تک گلاس ولاس بھی مار دیتے ہیں. تو وہ بہت جب ان کی بحث گرم ہوئی, بہت تیش میں آئے دونوں پارٹیاں, تو ان صاحب سے جو مسلم لیگ نون کے اس وقت سینیٹر تھے ان کے منہ سے نکلا, کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے نوجوان کیا چاہتے ہیں, مانتے نہیں ہیں, خود میرا اپنا بیٹا نہیں مانتا, عمران خان کا فالوور ہے, میں اسے بڑا سمجھا نہیں مانتا. اب ان کے منہ سے نکل گیا کہ میرا اپنا بیٹا جو ہے وہ بھی میری بات نہیں مانتا, وہ بھی عمران خان کا فالوور ہے, اور وہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر تھے ٹی وی پہ. ہر گھر میں ایک بندہ پہنچا ہوا ہے, حتیٰ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب راحیل شریف صاحب آرمی چیف تھے تو اس وقت عمران خان نے اسلام آباد میں ایک دھرنا کیا تھا مسلم لیگ نون کی. ایک روز یہ ہوا اچانک, اپنا فیض آباد میں آپ انٹری پوائنٹ پہ گاڑیاں چیک ہوتی تھیں اسلام آباد آنے کے لیے, ایک گاڑی میں سے ایک انہوں نے دیکھا کہ بندے نے گاڑی میں جھنڈا ونڈو سے باہر نکالا ہوا ہے, نعرے لگاتا ہوا آ رہا ہے, تو پولیس والوں نے سائڈ پہ پل کیا, اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی کدھر جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا یہ جھنڈا نہیں نظر آ رہا, میں دھرنے میں جا رہا ہوں. اس نے کہا آپ ہیں کون؟ یہ گاڑی آگے جو ہے یہ کوئی مطلب ہے, معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا جی کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے؟ اسلام آباد پولیس کے لوگوں سے اس نے پوچھا, اس وقت حکومت مسلم لیگ کی تھی اور عمران خان اپوزیشن میں تھے. انہوں نے کہا جی ہماری ڈیوٹی ہے, ہم چیک کر کے بھیجتے ہیں اور آپ تھوڑے سے مشکوک سے لگ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ میرا نام ہے, مشکوک نہیں ہوں میں. انہوں نے کہا جی کہ اس لیے ہمیں ہمارا اندیشہ ٹھیک ہے کہ آپ واقعی مشکوک ہیں, آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں, ہم آپ کو پروٹوکول کے ساتھ وہاں لے کے جائیں گے. और उन्होंने कहा कि जी आप इस गाड़ी में नहीं, आप हमारी गाड़ी में लेके जाएं, हम आपको लेके जाएंगे। इतनी देर में वहां पहुंच गए इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े लोग और उन्होंने गाड़ी में उस बिठा लिया बंदे को और उसे वापस उसके अंकल के पास, चचा के पास ले गए और चचा के सामने बिठा के कहा कि जनाब इस बच्चे को आप संभालेंगे, नहीं तो अगर ये जहां जा रहा था अगर वहां चला जाता और इसे कोई हल्का सा भी नुकसान हो जाता या कोई मसला बनता तो ये बहुत बड़ा मसला बनना था, और अगर ये वहां पहुंच के स्टेज पे तकरीर कर देता तो आपके पल्ले क्या रह जाता। और वो चचा जान का नाम था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहील शरीफ।
ओके
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहील शरीफ के भतीजे को पकड़ा था पुलिस ने 0 पॉइंट पे, वो धरने में जा रहा था इमरान खान के। इस हद तक इमरान खान जो कहता है ना, अभी पिछली स्पीच में इमरान खान ने कहा था कि अपना आर्मी के लोगों की फैमिलियां भी आएंगी हमारे साथ धरने में, तो इमरान खान को अंदर से रिपोर्टें मिल रही होती हैं कि अदलिया के घर जो अदलिया के लोग हैं बड़े जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनकी फैमिलीज में भी इमरान खान के फॉलोअर और इमरान खान के हमदर्द और खैरख्वाह हैं, और आर्मी अफसरान के घरों में भी इमरान के हमदर्द और खैरख्वाह हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है ट्विटर पे हर बच्चे ने अकाउंट खोला हुआ है और ट्विटर पे जो नहीं है वो इंस्टाग्राम पे तो है ही है, और फिर वो बच्चे आपस में कम्युनिकेशन भी करते हैं, ग्रुप्स भी बने हुए हैं बच्चों के, वहां बच्चों की डिस्कशन भी होती हैं, और वो बच्चे अब बच्चे नहीं रहे जो 22 साल पहले इमरान खान ने शुरू किया था सिलसिला, अब तो वो सारे जवान हो चुके हैं, अब वो बच्चों वाले हैं। तो पाकिस्तान में इलेक्शन में जाएंगे और ये जो फ्री एंड फेयर वाले जितने मर्जी है ये हल्के गड़बड़ कर लें, ये नहीं हो सकता कि इमरान खान को वो रोक सकें। हाँ ये हो सकता है इमरान खान को बड़ी मेजोरिटी से रोक लेंगे और अगर बहुत कामयाब हुए तो इतने बंदे ये पीडीएम वाले करा लेंगे कि शायद ये मुस्लिम लीग नून और जेयूआई और पीपल्स पार्टी मिला के शायद कोई लूली लंगड़ी हुकूमत बना लें। लेकिन आप कहें जी कि कोई बहुत बड़ी अक्सरियत इमरान खान के पास आ जाएगी या मुस्लिम लीग नून के पास आएगी, वो दोनों के पास नहीं आएगी, क्योंकि बड़ी अक्सरियत हमारे बड़ों को सूट नहीं करती। और वो ये सारी एफर्ट इसीलिए हो रही है कि कोई भारी अक्सरियत से जीत ना जाए, चाहे उसका नाम नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो मरियम हो, चाहे बिलावल हो, वो किसी को भारी अक्सरियत से जीता हुआ देखना नहीं चाहते। इसलिए बेफिक्र रहे ये हमारे रिजवी साहब भी और मैं भी और आप भी, यहाँ भारी अक्सरियत से कोई भी नहीं जीत रहा, जो भी जीतेगा बहुत माइन्यूट मामूली सी अक्सरियत से जीतेगा और वो इनका मरहूने मिन्नत ही रहेगा।
क्विकली हमारे पास टाइम बहुत कम है, दो और कॉल्स लूंगा मैं क्विकली। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें सर?
जी
कौन बात करें?
बस अब यही शिकवा
रह गया।
फारूक हाशमी साहब,
आप मेरे ख्याल माज भाई आप एक दफा और छुट्टी पर जाएं। अच्छा इलाना साहब का मैं तबसरा वगैरह सुन रहा हूँ, माशाल्लाह बड़ा मवाद लेकर आते हैं अपने साथ और बड़ा एक्यूरेट मवाद लेकर आते हैं। मैं सिर्फ इनसे मुझे थोड़ी सी एक शिकायत है कि पहले जो थी आवाम को, अब ये गवर्नमेंट सब कुछ बताती है कि जी पेट्रोल भी महंगा होगा, चीनी भी महंगी होगी, आटा भी महंगा होगा, आईएमएफ भी कुछ नहीं देगा, हम रोड पर आ गए हैं, ये तो सब सच सच बता रहे हैं ना। तो अब हम क्यों शिकायत कर रहे हैं? नंबर वन, अच्छा अब हम शिकायत कर रहे हैं कि ये लोग हौसले बिठा रहे हैं। तो अब एक सवाल और है जो इतनी देर मैंने होल्ड किया वो मैं भूल गया, लेकिन
आप मुझे छुट्टी पे भेज रहे हो, आप जरा बादाम खाओ।
असल में ना पता हसूर खालियों में इसलिए मसला हो गया।
चलें ठीक है, ओके थैंक यू।
खान साहब जब भी आएंगे इलेक्शन पे तो इनका तो पता नहीं क्या बनेगा, मुझे जरा इस पर मुझे रोशनी डालें कि जाहिर है आना तो इमरान खान को ही है, लेकिन फिर इन लोगों का क्या बनेगा? उस वक्त तक ये सब साफ होके जा चुके होंगे, क्या करेंगे?
बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। क्विकली,
अच्छा ये जो साहब थे नाम फिर भूल गया, फारूक हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया फारूक हाशमी साहब।
आप भी ना, पता है कि आप भी ना बादाम खाना शुरू कर दें।
बादाम जो है ना वो लाहौर का रास्ता हर कोई बताता है, किराया कोई नहीं देता। आप बादामों का मशवरा मुझे भी दे रहे हैं और फारूक हाशमी साहब को भी दे रहे हैं, आपको चाहिए आप बल्क बांध से 2 पैकेट बनवाएं गिफ्ट पैक, एक फारूक हाशमी साहब के लिए और एक मेरे के लिए, और एक ये आपके साथ बैठी हुई आपकी को होस्ट और पाकिस्तान की नंबर साफी शाजिया मलिक, एक इन्हें दें ताकि हमें खाएं हमें पता भी चले कि हमारे भाई ने कोई मशवरा दिया था और बामल मशवरा दिया था। जबानी बातें करने का दौर अब गुजर गया, यही गिला है फारूक हाशमी साहब का भी कि प्रैक्टिकली जो हो वो हो। और ये जो कहते हैं ना कि इनका क्या होगा, मेरे ख्याल में ये इमरान खान की लर्निंग हो रही है, इस वक्त हुकूमत शहबाज शरीफ नहीं कर रहा, इमरान खान की लर्निंग हो रही है। इमरान खान मेरे ख्याल में लक्की आदमी है। आप जस्ट इमेजिन करें कि अगर ये तहरीके जमात पेश ना होती और इमरान खान ही इस वक्त हुकूमत कर रहा होता तो इमरान खान को ये जो आलमी एक इंटरनेशनली जो एक इन्फ्लेशन का सिलसिला है वो सारा इमरान के गले में ही होना था।
बहुत
इमरान खान ने जिस तरह भी बैलेंस की हुई थी चीजें, जहां से भी पैसे अरेंज कर रहा था, जैसा भी कर रहा था, उसने जून तक तो सब्सिडी कही हुई थी, अब जून भी खत्म ही हो जाना था आखिर में, फिर तो उसे बढ़ानी थी, जून के बाद तो बढ़ानी पड़ती। लेकिन वो लकी था कि वो इस सारे मुश्किल से गुजर गया, लेकिन इस दौरान उसे सबक भी बड़े हासिल हो गए। फॉर एग्जाम्पल आज वो इमरान हामिद खान से मिला है के एक बहुत बड़े ग्रुप के लीडर हैं और वो इसलिए हामिद खान नाराज होकर घर बैठ गए थे क्योंकि वो जहांगीर तरीन और अलीम खान के खिलाफ थे और इमरान खान ने उस वक्त हामिद खान को अहमियत नहीं दी, अलीम खान और जहांगीर तरीन को सुना था। और आज हामिद खान जब मिला है और उसके बाद उसने मीडिया से बात की है, शायद जियो के शाहजेब खान खाजादा से बात की है उसने, और उसने कहा है कि इमरान खान ने यह तस्लीम किया है कि यू वर राइट और जो जो आपने जिन जिन अंदेशों का जिक्र किया था अलीम खान और जहांगीर तरीन के हवाले से वो सारे ठीक साबित हुए एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। ये इमरान खान जैसे जिद्दी आदमी से इतनी बात मनवाना भी बहुत बड़ी बात है और मेरे ख्याल में बहुत जल्द इमरान खान उस्मान बुज़दार की गलती भी तस्लीम करेगा और उस्मान बुज़दार से जुड़ी हुई सारी गोगियां और गोगे जो हैं उनसे भी अपने आप को अलग करेगा और ईरानियां अलग करेगा। उसमें इमरान खान इस हद तक जिद्दी आदमी है कि अगर उसे किसी पीरनी से भी अपने आप को निजात हासिल करनी पड़ी तो वो कर जाएगा। वो इस तरह का बंदा नहीं है। आप देखें कि जमायमा खान और रिहाम खान जैसी औरतों को उसने छोड़ते हुए 5 मिनट नहीं लगाए, अल्लाह ना करे वो पीरनी को छोड़े, उसका घर चलता रहे। लेकिन अगर इमरान खान को क्लियर कट सबूत मिल गए कि वाकई ये फर्रा गोगी और उसका हस्बैंड जमील गुजर और पिंकी पीरनी किसी कोई ट्रैका इनका बना हुआ था और इनकी वजह से उस्मान ने ये किए काम, तो कोई बईद नहीं कि एक दिन आप ये खबर सुने कि इमरान खान ने ये फैसला कर लिया है। तो ये इमरान की लर्निंग हो रही है, इमरान को पता चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल दुनिया की बड़ी सी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ले आता है इमरान खान, तो उसे ये नहीं पता चलना था कि कौन से 20 MNA हैं जिनको मैंने आइंदा इलेक्शन में टिकट नहीं देने, ये बंदे मुखलिस नहीं है मेरे साथ। ये अल्लाह ने ऐसा काम किया कि वो 20 बिल्कुल अलग चुन के दाने अलग हो गए। अब इमरान खान के ये 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी क्लियर हो गई हैं और वहां के लोगों को भी ये पता चल गया है और फिर ये लर्निंग हमारी पूरे पाकिस्तान की भी हुई है कि आप पूरे पाकिस्तान में लोगों को लोटों के हवाले से एक उनकी लोगों की याददाश्त ताजी हो गई है कि आइंदा हमने ऐसे किसी बंदे को वोट नहीं देना जो हमसे वोट एक पार्टी के नाम पर लेके जाए और आगे जाके हमारा सौदा कर दें, हमारा वोट बेच दें। तो ये लर्निंग हो रही है इमरान की। मेरे ख्याल में ये जितना भी टाइम उसे मिल रहा है उससे वो जितना सबक हासिल कर ले इतना बेहतर है।
अच्छा ये तो आपने मुझे कहा है ना कि तुम बड़ी जो है वो बड़ी आपके साथ बैठी हैं ये काबिल जर्नलिस्ट, तो आप इनको बदाम दें। मजिद भाई तबाही जो है ना जो फयाज भाई आपने मचाई थी जब 28 साल में आप बन गए थे ना एडिटर, तो आपके बारे में लोग कहते थे कि आप बड़े काबिल हैं। फहद हुसैन तो मेरे एडिटर थे लेकिन उनके बारे में कहते थे जी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हैं तो इसलिए उनको बनाया गया है। तो आप अपने बड़े मेरिट
लाए थे। आप ज्यादती कर रही हैं, आप ज्यादती कर रही हैं।
लायक थे वो भी बड़े।
कोलंबिया यूनिवर्सिटी और बाकी सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन उनके मामू उस वक्त वजीर इतलात थे जनाब
मुशायद हुसैन साहब,
और मेरे कोई मामू वजीर इतलात नहीं।
वही तो मैं कह रही हूँ।
अच्छा क्विकली हम एक दो क्वेश्चन ले रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो ओके जी नेक्स्ट वन जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम
जी। कौन बात कर रहे हैं सर?
जावेद साहब
जी। जावेद कर रहे हैं जी, क्या जी?
मैं तो पूछूंगा नाम हमेशा ही जी।
मेरा पूछे बात यह है कि आप ना हर 2 मिनट बाद कह देते हैं जी आखिरी काल साढ़े भाजी हाथ थक गए ने कला मिला मिला के।
मुझे भी है ना कि आप लोगों की कॉल आती है, मैं नहीं चाहता कि भाई उसको ना ऐसा किया जाए।
नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप देखे ना खबरनामे से पहले जो आप जो है ना आधा घंटा रगड़ा लगाते हैं ना खबरनामे से पहले आधा घंटा जो आप शाजिया साहब के साथ रगड़ा लगाते हैं उसको थोड़ा कम कर देना।
वो नहीं हो सकता सर। मैं जो भाई बताऊँ आपको क्यों नहीं हो सकता, वो वार्म अप होता है।
अच्छा आप यकीन करें आप एक हफ्ता नहीं आए ना तो बड़े मजे थे।
अच्छा
लो
जावेद भाई मैं गया
नहीं नहीं असल में फियाज भाई के साथ प्यार ही बड़ा है लोगों का, तो लोग मैसेजेस हमें भेजते हैं तो वो बात करना चाहते हैं उनके साथ।
माशाल्लाह नहीं, मेरा फियाज भाई से मेरे जो है एक दो सवाल है। एक तो ये है कि आप जो है पाकिस्तान से कितना अच्छा हो गया बाहर है, नंबर एक। नंबर दो, ये जितनी बातें फियाज भाई कर रहे हैं ये मैं पिछले तकरीबन 55 साल से सुनता आ रहा हूँ, ठीक है ना। मसला ये है कि मसले का हल क्या है, ठीक है ना, बात को मसले का हल क्या है। मकसद है कि पाकिस्तान में सिर्फ जो सबसे करप्ट जो पाकिस्तान का निजाम है वो आपका अदलिया निजाम है, अदालतों का निजाम है, ठीक है ना। आप अगर अपने जस्टिस सिस्टम को ठीक कर ले तो किसी की कोई मजाल नहीं है कि वहां कोई हैंगी फेंगी करे, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली ना उल्टी तरफ से शुरू हुए हैं, ठीक है ना। हमने क्या करना है कि जी आर्मी को ठीक करना है, हमने क्या करना है जी सियासतदानों को के साथ ठीक करना है। सर सबसे पहले अपने जस्टिस सिस्टम को ठीक करें, ये निजाम सारा ठीक हो जाएगा, ठीक है ना।
थैंक यू,
ठीक है ना।
बहुत शुक्रिया सर, बहुत।
हाँ जी फियाज भाई दसो।
जावेद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि
नहीं, पहले तो ही बताएं कितने कितने अरसे से आप पाकिस्तान से बाहर हैं।
मैं आई वॉज फोर्स टू लीव द कंट्री, मुशरफ साहब के साथ मेरे कोई मामलात ज्यादा गड़बड़ हो गए थे। मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था। 2001 में मैं पाकिस्तान से यहाँ आया, अमेरिका आया। अमेरिका 4 साल में रहा, वहां मैं वर्क परमिट मैंने लिया, वहां जॉब करता रहा, बिजनेस करता रहा। उसके बाद मैं यहाँ कनाडा, मेरी इमिग्रेशन पॉइंट्स बेसिस पे पहले हुई थी और कनाडा वाले बार बार लेटर लिख रहे थे कि आप आ नहीं रहे, और इन्होंने आखिरी मुझे थ्रेट किया कि इफ यू आर नॉट गोइंग टू एंटर इनटू कनाडा बिफोर 2nd of March 2005 वी विल प्रिज्यूम दैट यू आर नो मोर इंटरेस्टेड इन कैनेडियन इमिग्रेशन एंड वी विल कैंसल इट वंस फॉर एवर। ये लेटर मुझे मिला तो मैंने बिल आखिर 2 मार्च से एक दिन पहले 1st of March 2005 को मैंने यहाँ कदम रंजा हो गया, मैं यहाँ पांव रख दिया मैंने। मैं 2005 में यहाँ आया, उसके बाद मैं पाकिस्तान वापस चला गया था 2012 में, और मैं फिर पाकिस्तान में जब 2012 में वापस गया, आई ज्वाइंड एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप एंड आई वाज हेड ऑफ देयर रिपोर्टिंग ओवर देयर। फिर मैं मियां नवाज शरीफ साहब को, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, तो मैंने इन्हें एज ए बीट रिपोर्टर कवर किया मियां साहब के साथ, अंदरूने मुल्क भी और बैरूने मुल्क भी, और हत्ता के यूएन तक उनके साथ मैंने विजिट किया और उनको कवर किया। तो मियां साहब से भी मेरी अच्छी सलाम दुआ थी, बल्कि मरियम नवाज की तो मैं जो खास वाली गुड बुक्स थी उसमें था। तो मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, चीजों को बहुत अच्छी तरह करीब से जानता हूं, और ये मीडिया के दौर में, आजकल के दौर में आपके लिए फिजिकली आपको वहां होना जरूरी नहीं होता। आप यहां बैठे हो भी, अगर आपकी आंख हो देखने वाली और दीवार के पीछे चीजें पढ़ने वाली आंख हो तो आप दुनिया में कहीं भी पढ़ सकते हैं। और अगर मैं वहां 92 से लेकर 2001 तक 9-10 साल वहां जॉब करता रहा हूं और इस्लामाबाद में करता रहा हूं, और नाम लेना मेरे लिए जरूरी नहीं है, मेरे रिपोर्टिंग टीम में जो लोग थे इस वक्त भी, उनमें से 2 जो हैं वो इस्लामाबाद में 2 बड़े टेलीविजन चैनल्स के ब्यूरो चीफ हैं, और एक मेरी रिपोर्टिंग टीम का मेंबर जो है वो पीछे अभी मियां साहब की गवर्नमेंट में 3 साल आजाद कश्मीर में वजीर इत्तला रहा है। इस तरह के और शायद इस्लामाबाद पिंडी में कोई ऐसा टेलीविजन चैनल या अखबार होगा जिसमें कोई एक आध बंदा ऐसा ना हो जिसने मेरे साथ एज ए रिपोर्टर मेरी टीम में काम ना किया हो। तो मुझे तजर्बा है, मेरे रबते हैं, मैं लोगों से बात होती है चीजें, आप मेरे सामने अखबार 4 रख दें मैं पढ़ के आपको तजिया कर दूंगा। ये तजिया जो करना होता है इसके लिए जरूरी नहीं होता कि आप वहां बैठे हो किसी के गोडे के साथ लग के, या आप किसी पलड़े का आपने ठेका लिया हुआ हो, आपने पीटीआई का ठेका लिया हुआ हो, या मुस्लिम लीग नून का, या जरदारी साहब का। यकीन माने ठेका लेना जरूरी नहीं है, आप तजिया करना है आपने कहीं भी बैठ के आप कर सकते हैं। तो अगर ये भेजना चाहते हैं मुझे वापस, तो मुझे टिकट भेजें और मुझे ऑफिस से, जहां मैं जॉब करता हूं, यहां मैं एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट की जॉब करता हूं, तो वहां से मुझे 2 महीने की छुट्टी ले दें, टिकट दें, मैं 2 महीने वहां जाके फिर लोगों से मिलके ताजा तरीन इनके लिए मालूमात लेके आऊंगा, और फिर माजिद भाई को हम पक्की छुट्टी पे भेज देंगे, मैं रोजाना 3 घंटे प्रोग्राम किया करूंगा। डील होगी, बात नहीं होगी, प्रैक्टिकल होगी,
डील होगी।
जिन दोस्तों को गिला है कि मैं प्रैक्टिकली वहां मौजूद नहीं हूं, मुझे टिकट दे मैं चला जाता हूँ, मेरे ऑफिस से मुझे छुट्टी लेके दे मैं चला जाता हूँ, जिसका इंटरव्यू कहते हैं मैं वहां जाके कर आता हूँ, और वापस आके आपको ताजा तरीन बिल्कुल 1-to-1 डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जो है रिपोर्ट लेके आपको देता हूँ।
तो जितनी मैं यहाँ बैठ के ले रहा हूँ आपके मुफ्त में, इसी को एंजॉय करें, इसी के फायदा लें, और अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकले तो माफ कर दें, पसंद आए तो आपकी पसंदीदगी का शुक्रिया।
सवाल ही नहीं पैदा होता। फयाज भाई, आप तो उस तरह के बंदे थे कि आपके जो रिपोर्टर्स रिपोर्टें लाते थे और कहते थे फयाज साहब पता नहीं है कि ये सच है कि नहीं है, उसी वक्त आप डायल करते थे एक या दो नंबर और सारी की सारी स्टोरी सामने आ जाती थी। तो
दूसरा सवाल क्या था उनका?
दूसरा सवाल उनका यही था कि वो ये जब तक अदलिया ठीक नहीं करेंगे तो उस वक्त तक जो है ये मसले ठीक नहीं होंगे, वो ब्यूरोक्रेसी बीच में भूल गए।
ये मसला ये है ना कि हम कहते हैं हमारा सिस्टम खराब है, हर बंदा हम में से कहता है हमारा निजाम तो उस वक्त तक ठीक नहीं होगा जब तक
ठीक किसने करना है? ठीक किसने करना है? मरीज से आगे किसी ने करना है?
एक मिनट। हमारा मसला ये है कि हम में से हर आदमी ये समझता है कि फलां चीज ठीक नहीं होगी उस वक्त तक निजाम ठीक नहीं होगा। मेरा एतराज ये है कि निजाम है क्या? निजाम किसी एक चीज का नाम नहीं है। निजाम में अदलिया भी है, निजाम में फौज भी है, निजाम में मुकन्ना कानून साज इदारे भी हैं जो उनमें पार्लियामान कहते हैं, निजाम में हमारी सियासी पार्टियां और सियासी सेटअप भी है, निजाम में हमारी अवाम भी है, निजाम में हमारा मीडिया भी है, निजाम में हमारी ब्यूरोक्रेसी भी है, निजाम में हमारे सारे इदारे हैं। अगर निजाम खराब है इसका मतलब है हम सारे खराब हैं। उनकी बात के अदलिया ठीक हो जाए तो सारे ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल उनकी बात में वजन है, लेकिन अदलिया में कौन है? मैं और आप ही हैं ना, हमारे लोग ही हैं ना। हाँ, मैं इनके साथ एक प्रपोजल देता हूँ अगर कोई सुनने वाला हो, वैसे तो सुनने वाला है ही कोई नहीं पाकिस्तान में, वहां आप प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ के भी प्रपोजल दें तो कोई नहीं सुनता, हमारे 770 AM को किसने सुनना है। लेकिन हम अपने तौर पर डिस्कस कर लेते हैं एक प्रपोजल कि जिस तरह पाकिस्तान में सिविल सर्विसेज ग्रुप में पूरे पाकिस्तान में जो टैलेंटेड बच्चे बच्चियां होते हैं जो ये समझते हैं कि वो वाकई पाकिस्तान की क्रीम है, वो कॉम्पिटिशन के एग्जाम में सिविल सर्विसेज के एग्जाम में अपीयर होते हैं और हर साल हजारों बच्चे अपीयर होते हैं, उनमें से सैकड़ों जो है वो टॉप के जो होते हैं जिन्होंने सबसे अच्छे मार्क्स लिए होते हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है सिविल सर्विस एकेडमी में और फिर उन्हें मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम कर दिया जाता है जिस तरह की उन्होंने अपनी चॉइसेस फॉर्म फिल करते हुए लिखी हुई होती हैं। उनमें एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप होता है जिसमें ये ACDC वगैरह लगते हैं, एक पुलिस ग्रुप होता है, एक फॉरेन सर्विस ग्रुप होता है जिसमें ये सारे हमारे डिप्लोमेट होते हैं, एक कस्टम ग्रुप होता है, कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप होता है, इंफॉर्मेशन ग्रुप होता है, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ग्रुप होता है, पोस्टल ग्रुप होता है, जहां इतने ग्रुप होते हैं वहां एक जुडिशरी का ग्रुप, जुडिशियल सर्विसेज ग्रुप भी बना दें और उस जुडिशियल सर्विसेज ग्रुप में उनको 9 महीने या 1 साल जो सिविल सर्विस एकेडमी वाल्टन रोड लाहौर पे उन्हें ट्रेनिंग देते हैं वो दें, उसके बाद हर ग्रुप को अपनी अपनी डिपार्टमेंटल 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं वो दें और उस ग्रुप में उन्हीं लोगों को शामिल करें जिनकी बैकग्राउंड लॉ की हो, जिन्होंने लॉ पढ़ा हुआ हो और वो जब उस सिविल सर्विस एकेडमी से और अपनी डिपार्टमेंटल से होके 17वें ग्रेड में सिविल जज लगेंगे तो वो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर होंगे। उन्हीं लोगों को प्रमोट करके उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे उन्हें एडिशनल सेशन जज और सेशन जज और फिर उन्हें ही हाई कोर्ट में भेजें और फिर वहां से हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में आए। ये जो हम अपने चहेते जज उठा के हाई कोर्ट में लगा देते हैं और बाद में उन्हें सीनियरिटी की बेस पे सुप्रीम कोर्ट में ले आते हैं और बाद में हम हाथ मलते रह जाते हैं कि ये हमारे साथ साकिब निसार हो गया, हमारे साथ इफ्तिखार चौधरी हो गया, हमारे साथ आसिफ सईद खोसा हो गया और हमारे साथ गुलजार हो गया। ये सारा इसलिए होता है, इन सब लोगों के रैकेट चेक करें, ये चहेते उठाए गए हैं। साकिब निसार को किसको नहीं पता कि साकिब निसार लाहौर में जब तक वकील था वो इन मियां बिरादरान का वकील था, सारी जिंदगी इनके केसेस लड़ता रहा लेकिन इनका ब्लू व्हाइट वकील था इसलिए उसे हाई कोर्ट में जज लगाया गया, वहां भी उनकी खिदमत करता रहा लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद उसने जहां तक खिदमत कर सकता था करता रहा, जब उसके हालात खराब हुए तो उसने 180 डिग्री का यू टर्न लिया और उसके बाद मियां साहब को आंखें दिखाना शुरू कर दी और फिर सिसिलियन माफिया और पता नहीं क्या कुछ नहीं हुआ। तो बेसिकली गलतियां तो हमारी अपनी है, हमारा निजाम बिल्कुल गलत है, अदलिया का, अदलिया के निजाम में बेहतरी चाहिए लेकिन अदलिया से ज्यादा बेहतरी मुझे और आपको, हमें अवाम को चाहिए। अगर इमरान खान के लोग चाहते हैं कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है तो उस दिन क्यों नहीं निकले लोग बाहर निकले? अगर लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ सही है, तो जब नवाज शरीफ को निकाला गया था और उसने नारा लगाया था मुझे क्यों निकाला, तो इस्लामाबाद से लाहौर के लिए वो जुलूस लेकर निकला था तो क्यों नहीं लोग निकले थे सड़कों पे? हमारे लोग बाहर नहीं निकलते, लोग समझते हैं लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते और जब तक ये कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे इनके साथ यही होता रहेगा, अल्लाह ना करे ऐसा होता रहे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है, ये हमारे दोस्त जो फरूख साहब जैसे, जावेद साहब जैसे, रिजवी साहब जैसे, हुमायूं शेख साहब जैसे आपको कॉलें कर रहे हैं, ये वो फाल लोग हैं हमारी सोसाइटी के जो सिर्फ बात सुनते नहीं है बल्कि उनकी मेहरबानी वो फोन उठा के अपने दो अपने टू सेंट्स दे देते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर देते हैं, वो प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं। इन चीजों से ये होता है, लोगों को पता चलता है कि ये एक विजिलेंट सोसाइटी है। और हम ओवरसीज 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, हम कोई इस तरह का उज्वे मुअत्तल नहीं है कि हमें उठा के बाहर फेंक दें। हम ड्यूअल नेशनैलिटी रखते हैं। ड्यूअल नेशनैलिटी का मतलब यह है कि हमें बराबर हक है यहां भी और वहां भी। अगर हमें हमारे बड़ों ने कोई अच्छे मुआहदे किए हुए थे कॉमनवेल्थ कंट्रीज के तहत इन 18 या 20 जितने मुल्कों के साथ, उसका फायदा हमें ये होता है कि हम यहां भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहां भी कर सकते हैं। हमें यहां भी वोट डालने का हक हासिल है, हमें वहां भी हासिल है। वक्ती तौर पर हमसे वो हक छीन लिया गया है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ये हक दोबारा हमें वापस मिलेगा इंशाल्लाह।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम माजिद भाई, मैं रिजवी बात कर रहा हूँ दोबारा।
अब तो दोबारा कॉल करने के $5 है सर।
$5 मैं $10 दूंगा, ये हमारे मुल्क का मामला है।
ओके सर,
ये बताएं कि अभी इन्होंने कहा कि बड़ों को अच्छा नहीं लगता कि कोई भी 2/3 मेजोरिटी में आए, तो इमरान खान ने बारहा अपने इंटरव्यूज में कहा कि अगर हमें सिर्फ 2/3 मेजोरिटी नहीं मिली तो हुकूमत बनाने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि हम वो रिफॉर्म्स कर ही नहीं सकेंगे जो हम करते हैं, तो फिर उस सूरत में क्या होगा।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी।
इनका सवाल बड़ा सादा है, इनके सवाल में ही जवाब है कि इमरान खान कहते हैं कि 2/3 मेजोरिटी मुझे ना मिली तो वो नहीं हो सकेगा, तो बिल्कुल इनके सवाल का यही जवाब है कि 2/3 मेजोरिटी ना मिली तो वो नहीं हो सकेगा। वो इसीलिए बावर करा रहा है कि प्लीज अगर आप चाहते हो कि मैं ठीक हूं तो मुझे 2/3 मेजोरिटी दो, अगर आप चाहते हो कि कोई और बेहतर है पार्टी या वो उनका जो इंतखाबी मंशूर है या उनका जो प्लान है मुल्क को आगे लेके चलने का वो बेहतर है तो उसे 2/3 मेजोरिटी दें। जिसने भी आना है, जिसका भी प्रोग्राम, जिसका भी एजेंडा, जिसका भी जो कुछ है, प्लीज हमारी कौम को, मेरे ख्याल में शायद पहली दफा लोग, मेरी ख्वाहिश है कि लोग लिटरली लोगों के इलेक्शन मैनिफेस्टो को, इंतखाबी मंशूर को पढ़ें, देखें और फिर दिल से उस पर फैसला करें कि कौन सी पार्टी उन्हें आगे लेके जाना चाहती है। और जब ये फैसला करने लगे तो उनके पिछले कारकर्दगी भी देखें कि कौन सी पार्टी कितना अर्सा हुकूमत में रही, जब आई थी तो क्या वादे किए थे, कितने पूरे किए कितने नहीं किए, तो ये सारी चीजें देख के जब कौम फैसला करेगी तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। मायूसी गुनाह है, मायूसी बिल्कुल नहीं।
ओके जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम सर
जी, कौन बात कर रहे हैं सर?
मैं सर आजम बात कर रहा हूँ, आप कैसे? ठीक ठाक
अल्हम्दुलिल्लाह आजम भाई, फरमाइए।
सर मैं सऊदी अरब में था।
अच्छा,
तो रियाद में एक होटल है, बहुत लग्जरी होटल है।
अच्छा,
बहुत बड़ा, और एकदम वो खाली हो गया।
अच्छा
ठीक है सर, और जो मोहम्मद बिन सलमान है ना, शाहजा जी को पता चल गया आज मैं क्या कहने वाला,
वो सारों को पकड़ के वहाँ पे ले आया। ठीक है,
बात करें।
ठीक है सर, तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी ये ब्यूरोक्रेट्स है, जितने भी ये पॉलिटिशियन है, जितने भी ये आर्मी के जो करप्ट लोग हैं, इनको पकड़ के उधर लेके जाए और उनको बोलो हमारा मुल्क का पैसा निकालो भाई, बहुत हो गया। ठीक है, तब कुछ हल निकलेगा, अदरवाइज अल्लाह ना करे, लेकिन हमारे हालात सही नहीं है।
ओके आजम भाई, बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया आपका जी।
आजम साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ बड़े कह गए थे कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो वो अब हम जमहूरियत का इंतकाम ले रहे हैं।
किंगडम है
वहाँ बादशाहत है सऊदी अरब में, और जहाँ बादशाहत होती है वहाँ इस तरह होटल खाली करा के और लोगों को पकड़ के फेंक के उनसे पैसे निकलवाए जा सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई सूरत नहीं है। और ये जो एक पहले कॉल आई थी खमीनी प्लस खमीनी वाली, और अब ये जो साहब कह रहे हैं, आप इससे अंदाजा लगाएं कि हमारी कौम किस हद तक इस मौजूदा निजाम से, सिस्टम से तंग आ चुकी है। ये अब हर वो काम करने के लिए तैयार हैं ज़हनी तौर पर जो किसी सिविलाइज सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है। लेकिन इनका कसूर नहीं है, ये पिछले 30-35 सालों में इस हद तक इनके साथ, इस अवाम के साथ ज्यादतियां हुई हैं कि अब अगर इनके मुंह से ऐसी बातें ना निकलें तो और क्या निकले, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता हुआ देखा है। इन्होंने देखा है कि किस तरह पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून वालों के खिलाफ केसेस किए, और किस तरह आगे वो झूठ वो करप्शन उन्होंने किया है, किस तरह नून लीग वालों ने उनके खिलाफ किए, और किस तरह इमरान खान ने फिर आके इन दोनों को चोर करप्ट का कर कोई भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो उस जब कोई भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाता तो उसके बाद फिर आवाम यही सोचती है जिस तरह ये हमारे भाई सोच रहे।
ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है,
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अनफॉर्चुनेटली देयर अबाउट 3 or 4 more calls, मगर
कोई नहीं, वेंसडे को फिर से आएंगे,
वेंसडे को फिर दोबारा फिर आएंगे, ये
फिर से फ्याज भाई से बड़ा प्यार हो गया लोगों का, वो सुनना चाहते हैं इनको।
फैज भाई
ने तो मेरी भी आज टांग खींच ली है, कहते नहीं आपने मेरे से बड़ी ज्यादती की है, मुशाहिद हुसैन का नाम ही नहीं लिया।
नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आपने मुशाहिद का नाम लिया, मैंने करेक्ट किया आपको कि आप ये ज़हन में रखें कि उसके मामू जो थे वो वज़ीर इत्तला'आत थे उस
वक्त। जी जी जी,
वो बाकी चीज आप बात खुद समझना।
फैसला बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह ताला वेडनेसडे को फिर आपसे मुलाकात होगी,
इंशाल्लाह
इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।
हाँ जी, फहद हुसैन वैसे बहुत अच्छे एडिटर थे, वही वॉज माई एडिटर इन द नेशन जब मैंने किया था, तो बल्कि उन्होंने मेरे लिए बड़ी रिकमेंडेशन भेजी थी, मतलब रिकमेंडेशन क्या, आई वॉज राइटिंग एज अ यू नो एज अ स्टूडेंट, तो उन्होंने कुछ मेरे, उन्होंने कहा तुम्हें तुम लिख सकती हो, मैंने कहा जी ये देख लें, उन्होंने देख के उन्होंने कहा यस योर इंग्लिश इज ब्रिलियंट, सो आई विल गिव मी योर सीवी, क्योंकि मैं उस वक्त सिटी बैंक में काम कर रही थी, तो आई वॉज एट यू नो मैं तरक्की कर सकती थी वहां पे, लेकिन उन्होंने फिर आरिफ निजामी साहब को भेजा मेरा सीवी वहां पे लाहौर, उन्होंने कहा कि वी वॉन्ट टू हायर हर ऑन द कॉपी डेस्क, तो मैं तो मेरा बड़ा उनके लिए रिगार्ड है, थैंक यू वेरी मच।
क्या बात है जी, क्या बात है।
हाँ जी,
सब 8 बजे इंशाल्लाह ताला 8 बजे 8 से लेकर 9 बजे तक फिर हम आपको टीवी के सामने बैठाएंगे, और
हिलना नहीं है आपने,
हमने जो खबरें सुनाई थी वो दोबारा से रिपीट करेंगे आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बिजी होते हैं उस वक्त, तो हमको ये कहा गया कि भाई आप दोबारा से खबरें सुनाया करें, तो चलिए साहब, हमेशा मैंने कहा आपका रेडियो स्टेशन है, आपका टीवी है, नो प्रॉब्लम जी,
मतलब आपकी तो नौकरी खतरे में पड़ गई है।
हाँ, ये देख लें आप,
ये नेक्स्ट टाइम नहीं लेना फैज भाई को,
नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं मुश्किल
ये है। अगर इन्होंने मैनेजमेंट को कुछ सजेस्ट कर दिया तो ये मुश्किल हो जाएगी।
हाँ, फिर वो ये कह रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूँ छुट्टी पे, है ना, तो 2 महीने की छुट्टी पे चले जाएंगे, तो ओ नहीं नहीं भाई नहीं नहीं
नहीं, उन्होंने कहा ना कि आपको भेज के मैं 3 घंटे का प्रोग्राम करूंगा, तो आपने अब इनको नेक्स्ट वेंसडे आने नहीं देना मजद भाई।
साहब, उसके 50 मिनट और 6 सेकंड हमारी घड़ी हो चुके हैं, कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम लेता हूं, उसके फौरी बाद प्रोग्राम में वापस आऊंगा, एंड उसके बाद फिर हम आपसे जा चाहेंगे।
थैंक यू मच भाई, सी यू इंशाल्लाह टुमारो,
कल तक के लिए इंशाल्लाह,
और अब आपने गायब नहीं होना, ओके,
कल मैंने गायब नहीं होना।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
मस्जिद इब्राहिम एक फंड रेजिंग इवेंट का इनेकाद कर रहा है जो जून 18 शाम 6 बजे टोरंटो मेरियट मार्कम में होने जा रहा है। इस फंड रेजिंग में दुनिया के मशहूर गेस्ट स्पीकर शेख आला अल सैयद शिरकत करेंगे। मस्जिद इब्राहिम की तामीर को पूरा करने के लिए $600,000 की जरूरत है। आप सबसे गुजारिश है इस नेक काम में अपना हिस्सा जरूर डालें। मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए तनवीर सुल्तान 416-566-3830 416-566-3830।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
ओ माया मेहंदी रोका या व्यादा होवे मौका, प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
स्वीट महल वालिया दा बिल्कुल नवा प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, 100 to 700 तक दी कैपेसिटी, ते खाना उही लाजवाब। स्वीट महल वाला प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, कन्वीनियंटली लोकेटेड इन बॉन। हुणे कॉल करो अते अपनिया पार्टियां बुक कराओ, 416-433-9191, 416-433-9191।
प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
S&S Lawyers को इन सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई अज ही S&S Lawyers नूं कॉल करो, 416-655-2000।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨੂਅਲ $5,000 ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੰਪਨੀ ਪੇਡ 92% ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਜਿੱਥੇ $20 ਪਰ ਆਵਰ ਪਲੱਸ $5,000 ਈਅਰਲੀ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਫਰਨੀਚਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਮਾਓ। ਹੁਣੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜੌਬ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-836-6974
शाह एंटरटेनमेंट के नासिर शाह लेकर आ रहे हैं दुनिया का मकबूल तरीन शो खबर हार आपके अपने शहर ब्रैम्पटन में जून 26 शाम 5 बजे एट कैनेडियन कन्वेंशन सेंटर ब्रैम्पटन में। खबर हार आफ्ताब इकबाल अपनी पूरी टीम के साथ आपके अपने शहर ब्रैम्पटन में। टिकट्स और स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल कीजिए 416-526-6800 416-526-6800।
Mesmerize Optical, sunglasses, eyeglasses and contact lenses.
Doctor on site, get your eyesight checked. Mesmerize Optical.
Markham and Shepherd, 1789 Markham Road, 416-335-0786.
कहते हैं कि माया को खींचे माया कर कर लंबे हाथ। हैरी सॉन द मेजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग आपने करनी है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप ताल्लुक आते हैं इनके, आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त भी हो जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे। हैरी सॉन जी बड़ी कमाल की तिकड़म लड़ा सकते हैं, बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का रेंज हो जाएगा। $228 से $1,000 महीना कैसे बचा सकते हैं? कॉल हैरी सॉन Now 647-228-1000 Harry Sond of Majestic Mortgages.
जी साहब एंडाजरी वेलकम बैक अगेन एंड साहब एक खूबसूरत गीत की तरफ लिए चलता हूँ आपको। नाजिया रहमान नाजिया हसन की आवाज में बहुत ही खूबसूरत नाजिया हसन की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गीत है, समा फरमाइए एंड उसके बाद फिर साहब हम आपको ले जाएंगे कहाँ पर, कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम और फिर न्यूज की जानिब। टिल टुमारो अल्लाह हाफिज।
$5,000 ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਪਨੀ ਪੇਡ 92% ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਜਿੱਥੇ $20 ਪਰ ਆਵਰ ਪਲੱਸ $5,000 ਈਅਰਲੀ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਫਰਨੀਚਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਮਾਓ। ਹੁਣੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜੌਬ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-836-6974 416-836-6974।
ਡਾਈਵੋਰਸ ਜਾਂ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਸਟਡੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਦੌਲਤ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ।
SNS Lawyers ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਕਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ SNS Lawyers ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-655-2000।
ਓ ਮਾਇਆ ਮਹਿੰਦੀ ਰੋਕਾ ਯਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ।
ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700 ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਉਹੀ ਲਾਜਵਾਬ। ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਟਲੀ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਬੌਨ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ 416-433-9191 416-433-9191।
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ।
मस्जिद इब्राहिम एक फंड रेजिंग इवेंट का इनेकाद कर रहा है, जो जून 18 शाम 6 बजे टोरंटो मैरियट मार्कम में होने जा रहा है। इस फंड रेजिंग में दुनिया के मशहूर गेस्ट स्पीकर शेख आला अल सैयद शिरकत करेंगे। मस्जिद इब्राहिम की तामीर को पूरा करने के लिए $600,000 की जरूरत है। आप सबसे गुजारिश है, इस नेक काम में अपना हिस्सा जरूर डाले। मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए तनवीर सुल्तान 416-566-3830
हमारी जो है बड़ी हसीन, जिनको मैं हमेशा